नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई को पटना में दो प्रमुख अभियुक्तों की रिमांड मिली, आज हो सकती है पूछताछ। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए नई समय सारणी जारी की। 1 जुलाई से कक्षाओं का संचालन सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:15 बजे तक होगा। और मौसम विभाग ने कहा, आज सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा, जिस पर सदस्य चर्चा में भाग लेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र पिछले सोमवार को आरंभ हुआ है, जबकि राज्यसभा का सत्र कल से शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद ओम बिरला फिर से लोकसभा अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें ध्वनि मत से निर्वाचित घोषित किया गया। कांग्रेस ने इस पद के लिए के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि पार्टी ने अध्यक्ष पद के निर्वाचन के दौरान मत विभाजन की मांग नहीं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने श्री बिरला को सदन का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री ओम बिरला ने दोबारा सदन के अध्यक्ष के रूप में काम करने का अवसर देने और उन पर विश्वास जताने के लिए सदन के सभी सदस्यों का धन्यवाद किया।
18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा संवाद हो और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ काम करें। मुझे प्रसन्नता है कि इस लोकसभा में 281 मान्य सदस्य पहली बार चुनकर आए। मैं सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं।
इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी समेत राज्य सरकार के कई मंत्रियों और गणमान्य लोगों ने भी ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में देश के विभिन्न शहरों में जांच तेज कर दी है। एजेंसी की टीम जांच के लिए कल झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसएस स्कूल पहुंची। सीबीआई के अधिकारियों ने पेपर लीक से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर स्कूल के प्राचार्य से पूछताछ की। इसके बाद आगे की पूछताछ के लिए सीबीआई उन्हें अपने साथ ले गई। प्राचार्य नीट परीक्षा के लिए हजारीबाग के स्कूलों के शहर के समन्वयक थे। सीबीआई टीम ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई हजारीबाग की शाखा के अधिकारियों से भी पूछताछ की, जहां प्रश्न पत्र रखे गए थे। गौरतलब है कि राज्य की आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने पहले कहा था कि पटना के खेमनीचक प्ले स्कूल से आंशिक रूप से जला हुआ प्रश्न पत्र जब्त किया गया, जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए से प्राप्त प्रश्न पत्र से मेल खाता है। इसी प्रश्न पत्र की श्रृंखला हजारीबाग के कल्लू चौक स्थित ओएसएस स्कूल परीक्षा केंद्र पर भेजी गई थी। ईओयू ने इससे संबंधित सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। इधर नीट यूजी परीक्षा 2024 पेपर लीक मामले में सीबीआई को दो प्रमुख अभियुक्तों की रिमांड मिल गई है। पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले के दो अभियुक्तों बलदेव कुमार उर्फ चिंटू और मुकेश कुमार को सीबीआई रिमांड पर दे दिया है। इन दोनों अभियुक्तों से आज पूछताछ किए जाने की संभावना है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई से कक्षाओं का संचालन सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:15 बजे तक होगा। शिक्षकों को 8:50 तक स्कूल पहुंचना है, जबकि उनकी छुट्टी शाम 4:30 बजे होगी। शिक्षा विभाग ने संस्कृत विद्यालय और मदरसा समेत सभी सरकारी स्कूलों के लिए नई समय सारणी जारी की है। समय सारणी के अनुसार सुबह 9 बजे से प्रार्थना और व्यायाम होगा, जबकि पहली कक्षा की शुरूआत 9:15 बजे होगी। पूर्वाहन 11:55 से 12:35 तक मध्यांतर होगा। शनिवार को कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए बैगलेस सुरक्षित शनिवार की व्यवस्था जारी रहेगी। इस दिन माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्कूलों में मध्यांतर तक ही कक्षाएं चलेंगी। इसके बाद बाल संसद, खेलकूद और अन्य सृजनात्मक कार्यों का पालन किया जाएगा। नई समय सारणी के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 45 शिक्षण घंटे निर्धारित किए गए हैं। इसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में वाल्मीकि सभागार और अतिथि गृह परिसर का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज, स्थानीय सांसद सुनील कुमार के साथ ही अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इधर मानसून के सक्रिय होने के साथ ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 29 जून से 30 सितंबर तक पर्यटकों के लिए सभी तरह के टूर पैकेज पर रोक लगा दी गई है। वीटीआर के निदेशक डॉक्टर निशा मणि ने बताया कि इस दौरान जंगल सफारी, साइकिल सफारी और नौकायन की सुविधाएं भी प्रतिबंधित रहेंगी। नेत्रहीनों के कल्याण के लिए विशेष योगदान देने वाली महान समाजसेवी हेलेन केलर की आज जयंती है। हेलेन केलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। उन्होंने नेत्रहीनों, मजदूरों और महिलाओं के अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। केलर ने नेत्रहीन समुदाय की सहायता के लिए कई पुस्तकों की रचना भी की। नेत्रहीन परिषद के महासचिव डॉक्टर नवल किशोर शर्मा ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि हेलेन केलर आज भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं।
कुमारी हेलेन केलर और लुई ब्रेन साहब जैसे कुछ खास लोग हमारे समुदाय में हुए हैं, जिन्होंने जो कार्य किया है उससे हम लोगों को काफी प्रेरणा मिलती है। मिस हेलेन केलर जी का कहना था कि विकलांग होना या दिव्यांग होना उतना चिंता का विषय नहीं है, उतना दुखद नहीं है जितना लक्ष्य विहीन होना। तो उनका ये कहना है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और जीवन का लक्ष्य निर्धारित जो व्यक्ति करेगा, लक्ष्य की पूर्ति की ओर काम करेगा, तो उसे सफलता मिलेगी। उन्होंने करके दिखलाया।
डॉक्टर शर्मा ने नेत्रहीन समुदाय के लिए किए जा रहे एनडीए सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में नेत्रहीनों के लिए किए कार्य से दिव्यांगजनों को सम्मान और शक्ति मिली है।
हम लोग नई सरकार आने के बाद पिछले 10 वर्षों से लेकर अभी तक अनुभव कर रहे हैं कि काफी बदलाव आया है और दिव्यांगता के क्षेत्र में सरकार ने काफी काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक कानून 2016 ईस्वी में पारित हुआ दिसंबर में लोकसभा से, और उसमें अनेक बातों के अलावे कुछ खास बातें जोड़ी गई। जैसे पहले विकलांगता दिव्यांगता का 7 क्षेत्र था, अब दिव्यांगता का क्षेत्र 21 प्रकार के लोगों को दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल किया गया और इससे अधिक लोग लाभान्वित रहे हैं पहले की तुलना।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। राज्य के उत्तर और पूर्वी हिस्सों में मानसून की सक्रियता से बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि राज्य के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से मानसून की ट्रफ रेखा गुजर रही है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हुई है। इस अवधि में सबसे अधिक किशनगंज के बहादुरगंज में 280 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तर पूर्व भाग के एक या दो स्थानों में अत्यंत भारी वर्षा, जबकि प्रदेश के शेष भाग में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई। किशनगंज के बहादुरगंज में 280.4 मिलीमीटर, दिघाल बैंक 116.2 मिलीमीटर, तैयबपुर 85.6 मिलीमीटर, हारविसगंज 55.4 मिलीमीटर, प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस।
मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं सुपौल, अररिया और किशनगंज जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान कई स्थानों पर तेज आंधी चलने की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिनों में पूरे राज्य में मानसून सक्रिय हो जाएगा।
अगले 3-4 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून को बिहार एवं झारखंड के शेष भाग में आगे बढ़ने की संभावना दिख रही है। अगले 48 घंटों के दौरान प्रदेश के हिमालय की तलहटी के जिलों के एक या दो स्थानों में भारी से बहुत भारी वर्षा जबकि शेष भाग में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान प्रदेश के पश्चिम भाग के कुछ स्थानों एवं शेष भाग के एक या दो स्थानों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 केएमपीएच रहने की भी संभावना है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के 6 जिलों में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई। मुंगेर और भागलपुर में दो दो तथा जमुई, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और अररिया जिले में एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे में मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रूपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्कता बरतने की अपील भी की है। किशनगंज के अर्राबाड़ी में पोखर में नहाने के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सभी बच्चे पढ़ाई कर लौटने के बाद लकड़ी बारा पोखर में नहाने गए थे। T20 विश्व कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से पराजित कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। त्रिनिदाद में खेले गए मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की पूरी टीम 11.5 ओवर में मात्र 56 रन पर ही सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका ने 9वें ओवर में ही 1 विकेट के नुकसान पर यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया। वहीं आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच गयाना में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम सुपर 8 मुकाबले में अपने ग्रुप की शीर्ष टीम है। विश्व कप का फाइनल मुकाबला शनिवार को बारबेडोस में खेला जाएगा। अंजू देवी पटना जिला परिषद की अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। पटना जिला समाहरणालय में हुए जिला परिषद चुनाव में अंजू देवी के पक्ष में 33 वोट पड़े, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी रेहाना परवीन को सिर्फ 5 मत प्राप्त हुए। निजी स्कूलों में RTE के तहत नामांकन के लिए ज्ञानदीप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले यह तारीख 25 जून निर्धारित थी। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले राजेंद्र सेतु पर ढलाई कार्य के कारण कल रात 10 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक सभी तरह के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर पंचायत में पदस्थापित 5 शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन सभी पर नियोजन के दौरान फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष पद पर दूसरी बार चुने जाने से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, हर्ष और हंगामे के साथ ओम बिरला का स्वागत। दैनिक जागरण का शीर्षक है, राहुल गांधी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में मिली मान्यता। प्रभात खबर ने नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक मामले में सीबीआई जांच की खबर को प्रमुखता दी है। अखबार का शीर्षक है, और बढ़ेगी सख्ती, नीट यूजी 2024 प्रश्नपत्र लीक मामले में जांच में आई तेजी। राष्ट्रीय सहारा ने स्कूलों के लिए 1 जुलाई से लागू हो रही नई समय सारणी को प्रमुख शीर्षक बनाया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सप्ताह में 45 घंटे पढ़ाना जरूरी। दैनिक भास्कर ने मानसून से जुड़ी खबर का शीर्षक दिया है, 6 दिन बाद नहीं चली लू, अब मानसून आगे बढ़ेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई को पटना में 2 प्रमुख अभियुक्तों की रिमांड मिली, आज हो सकती है पूछताछ। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के लिए नई समय सारणी जारी की। 1 जुलाई से कक्षाओं का संचालन सुबह 9 बजे से अपराह्न 3:15 बजे तक होगा। और मौसम विभाग ने कहा, आज सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।